ఓం శాంతి. క్యోంకి ఆప్ పెహలే దో సెషన్స్ జో కి ఇస్ ప్రజాపితా బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయ కా బహుత్ హి ముఖ్య జ్ఞాన హై ఔర్ వో జ్ఞాన్ జిస్సే జీవన్ పరివర్తన్ హోతా హై. క్యోంకి పాజిటివ్ థింకింగ్ కి బాతే యా కుచ్ ఔర్ ఎటిట్యూడనల్ చేంజ్ కి బాతే యే తో బాహర్ భీ దునియా మే భీ బహుత్ లోగ్ బహుత్ అచ్చా అచ్చా సమ్జా పాతే హై, లేకిన్ ఉస్కా ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కేసే హో ये स्पिरिचुअलिटी के बिना संभव नहीं है. और परम आदरणीय शीलू दीदी, आपने दो सेशंस में ये बहुत अच्छी तरह समझाया है कि पहले स्वयं पर विश्वास, आत्मनिश्चय या आत्मविश्वास, इससे मालूम पड़ेगा कि खुद को समझना और फिर खुदा को समझना. आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि अपनी शक्तियों में जितना विश्वास बढ़ेगा, जितने आप सक्षम होंगे, आपको फील होगा कि परमात्मा जैसी शक्तियां, उनके गुण, वो प्राप्तियां आप भी कर सकते हैं. तो आत्मनिश्चय, डिस्कवरिंग द सेल्फ, खुद को समझना और फिर परमात्मा को समझना, जो सेशन आपने आज सुबह किया था, और अभी विशेष वो बातें जो आदरणीय निर्वैर भाई जी ने थोड़ा थोड़ा टच की थी, अपना अनुभव सुनाते हुए कि इस संस्था के जो साकार माध्यम बने, फाउंडिंग फादर आदिदेव, परम आदरणीय ब्रह्मा बाबा, कैसे वो दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा बने, उन्हें कहीं ये दूर तक भी आभास नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ी संस्था का फाउंडिंग फादर बनूंगा. और इसीलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो दिन जिस दिन परमात्मा पिता ने दादा लेखराज को अपना साकार माध्यम बनाया, एक जरिया बनाया था ज्ञान देने का, वो दिन, वो डेट किसी को भी याद नहीं है. 1936 फरवरी मार्च के दिन थे. और किस तरह से उनको साक्षात्कार होते होते, परमात्मा पिता ने दिव्य साक्षात्कार कराते हुए कैसे उन्हें अपना माध्यम बना लिया, बहुत ही दिलचस्प, छोटे से रूप में, सूक्ष्म रूप में आपको सुनाई जाएगी. क्योंकि वैसे तो बहुत विशाल, बहुत ही विशाल, वट वृक्ष जैसे संस्था की एक विशाल कहानी है, लेकिन फिर भी आदरणीय शीलू दीदी की विशेषता है सागर को गागर में भरने की. आपकी पर्सनैलिटी किसी भी प्रकार के परिचय की मोहताज नहीं है. बहुत अच्छा, बहुत मीठी वाणी और बहुत ही शब्दों पर कमांड, और किस तरह से सरलता से अपनी बात सबके दिलों में उतार सकें, ये आपकी विशेषता है. तो परम आदरणीय शीलू दीदी, आपसे हम सुनेंगे कि कैसे ये संस्था एक छोटे से पौधे से विशाल वट वृक्ष बनी, और किस तरह से हैदराबाद सिंध से लेकर भारत में आना और भारत से सारे देशों में, पांचों महाद्वीपों में फैलना, किस तरह से इतने विस्तार को पाना, ये सारी कहानी आप थोड़े से समय में ही बहुत अच्छी तरह आपको समझाएंगे. और सुनते हुए आपको लगेगा कि आप भी वहां पहुंच गए हैं, ये अनुभव आप करेंगे. इसके बाद आदरणीय मुन्नी दीदी हमारे बीच पधारेंगे, उनके बारे में भी हम फिर बात करेंगे, वो अपना बड़ा अच्छा अनुभव सुनाएंगे. अभी हम शीलू दीदी जी से सुनेंगे.
ओम शांति. अभी अभी आप सभी ने एक बहुत प्यारा सा गीत सुना, बहुत सुंदर शब्द थे. भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नव युग का निर्माण करने शिव ने उनमें शिव ने उनमें स्थान लिया। तो भारत की भूमि पर कौन आए और कैसे शिव ने उनमें स्थान लिया, ये अद्भुत जीवन कहानी है पिताश्री ब्रह्मा बाबा की। कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा और कैसे उन्होंने एक बीज रोपा अपने तन मन धन द्वारा, जिसका आज ये वट वृक्ष के रूप में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पनप रहा है, जिसमें हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है, भाई भी अनेक हैं और आप जैसे लाखों परिवार हैं जो नियमित विद्यार्थी बनकर के इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास अपने परिवार में रहकर अपने फैमिली अपना व्यवसाय सब कुछ करते हुए एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ आते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा और कैसे परमात्मा ने उनको यह नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को आदि पिता कहा गया है, प्रजापिता सारी प्रजा का पिता, मनुष्य सृष्टि का रचयिता। वैसे तो मंदिरों में शास्त्रों में चित्रों में ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ आदि दिखाते हैं, चौमुखी दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। उनके हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, इसका भाव यही है कि परमात्मा ने उनके द्वारा सभी शास्त्रों वेदों का सार सुनाया। और इस कलयुग के अंत में जबकि उनको सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी थी, तब उनमें दिव्य प्रवेश किया। तो ये नाम इन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा, खुद नहीं रखा, लेकिन परमात्मा ने उनको यह अलौकिक नाम दिया। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा जिन्होंने 1936 में यह बीज डाला और आज 137 से भी अधिक देशों में लगभग 10,000 ब्रांचेस और इसमें कम से कम 10 लाख परिवार इसका पूरा लाभ ले रहे हैं नियमित विद्यार्थी बनकर। पांचों ही खंडों में इसकी सेवाएं चल रही है, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। तो आपका पूर्व नाम दादा लेखराज था, लखीराज बाबू के नाम से आप हैदराबाद सिंध में बहुत बड़े जौहरी थे। साधारण परिवार में जन्मे और अपने ही जीवन काल में बहुत ऊंचे व्यवसाय को आपने चुना और आप बहुत ही सफल जौहरी के रूप में आप आगे बढ़े। आपकी बहुत बड़ी शोरूम कलकत्ता में थी और 1936 में उनके जीवन में ये परिवर्तन आए जबकि उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। तो 1876 में आपने जन्म लिया और उस समय आप जानते हैं अंग्रेजों का राज्य था और भारत में कई राजे रजवाड़े भी थे। तो कैसे बाबा इतने ऊंचे हद तक पहुंचे, क्योंकि उनके ग्राहक कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। हीरे जवाहरात कौन खरीदेंगे, राजाएं महाराजाएं खरीदते थे, अंग्रेज खरीदते थे और कलकत्ता से वे आते थे कलकत्ता में और इनकी शोरूम में अवश्य जाते थे हीरे खरीदने के लिए। बाबा कई बार अपने अनुभव सुनाते हैं। तो लखीराज बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि बहुत बड़े दानी थे, जितने ही धनी थे उतने ही दानी थे, उतने ही बड़े भक्त थे, विष्णु की भक्ति करते थे, और बहुत सुखी परिवार था। 5 बच्चे थे, 3 बेटियां, 2 बेटे, और सबकी लगभग शादी करा चुके थे, पोतरे दोतरे, बड़ा परिवार था उनका। और कैसे इतने प्रसिद्ध थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता कभी हाथ खाली नहीं आता। उनको पता था कि बाबा से हमें कुछ दान मिलेगा। साधु संत महात्माएं भी उनके पास जाते थे, उनके घर में रहते थे और सत्संग बाबा उनसे करवाते थे। गीता का नित्य पाठ करते थे और कोई ऐसा मंदिर भारत का नहीं था जो बाबा ने वहां जाकर दर्शन न किया हो। अमरनाथ की यात्रा भी की थी, पर विष्णु के अटूट भक्त थे। गीता उनको कंठस्थ थी। बिना नागा अपने घर में रोज नहा धो करके अपने परिवार को बिठा करके गीता का ज्ञान सुनाते थे। ट्रेन में सफर करते हुए भी वे नहा धो करके ट्रेन में भी पहले गीता का पाठ करते थे, तब कुछ और काम। विष्णु का चित्र सदा उनके पॉकेट में रहता था, वही उनके इष्ट थे। पक्के वल्भाचारी, कट्टर वल्भाचारी श्रीनाथ के भक्त थे। अब इतना सुंदर उनका जीवन था, कोई जीवन में दुख नहीं था, परंतु उनके अंतर में खोज थी। वो खोज क्या थी? ईश्वर को पाने की। बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ईश्वर कौन है, हम कौन है, हम क्यों इस संसार में आए हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है उसके लिए, वे सदा ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मुझे सत्य को अनुभव कराएं। तो कैसे, एक दिन की बात है, 1936 में पिताश्री को विष्णु के साक्षात्कार हुए। विष्णु चतुर्भुज उनके पास आकर जैसे दर्शन दिए और विष्णु ने उनको बहुत सुंदर वरदान दिया। अहम चतुर्भुज तत् त्वम्, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे समान हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सम्मुख, और ये सुंदर वरदान उनको मिला, तुम मेरे समान हो, तत् त्वम्। वैसे किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो वो इष्ट उनको यही वरदान देता है, तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी होगी, वैसा ही होगा। लेकिन बाबा को कोई इच्छा नहीं थी संसार में कुछ भी पाने की, केवल सत्यता को जानने की इच्छा थी। और तत् त्वम् का वरदान मिला, तो मेरे जैसे हो, तो मैं इन जैसे कैसे हूं, मन में शंका उत्पन्न हुई। और किस प्रकार हमारे बीच मुनि बहन जी पहुंचे हैं, जिन हमारी सीनियर बहन,
ओम शांति, हमारे बीच आदरणीय मुन्नी दीदी पहुंच चुके हैं। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी, कृपया गुलदस्तों से हमारी दोनों आदरणीय बहनों का स्वागत करेंगे।
तो बाबा के मन में बहुत प्रश्न उत्पन्न हुए कि मैं इन जैसा कैसे हूं। और देखते ही देखते बाबा को कैसे विष्णु के कई रूप उनके सामने आए और एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत् त्वम्। अपने गुरु से उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, मैं इन जैसे कैसे हूं। तो गुरु ने कहा, शायद भगवान को आप से कुछ महान कार्य करवाना है, इसलिए ये दर्शन आपको दिए और आपको उनका कार्य करना है। अब कौन सा कार्य करना है? तो गुरु ने उनको कहा कि आप उसके लिए एकांत वास का अनुभव कीजिए। उस एकांत वास में आपको शायद ईश्वर कुछ अनुभव और कराए। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे। उस समय अविभाजित भारत था, 1936 की बात है। तो बाबा बनारस चले गए अपने मित्र की कोठी में कुछ एकांत वास का अनुभव करने के लिए, जहां बाबा को बहुत ही साक्षात्कार हुए, जिसमें सबसे पहला साक्षात्कार उन्होंने किया इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का, जिसमें बाबा ने तीन रूप से इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश देखा। एक अणुयुद्ध के द्वारा, दूसरा ग्रह युद्ध के द्वारा और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि सारा संसार जलमग्न हो गया, प्रलय जिस क्या रूप धारण कर चुका। और बाबा को तो रोना आ गया, ये क्या मैं देख रहा हूं, हे भगवान ये संसार ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर इतनी सुंदर दुनिया आपने जो बनाई वो क्यों बनाई ऐसे ही खत्म होने लिए, फिर हे भगवान मुझे क्या करना है वो भी तो मुझे बताएं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। और फिर एक दिन बाबा को परमधाम का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने अनुभव किया एक सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, उसमें छोटे छोटे सितारे आत्माएं उल्टे वृक्ष की तरह, जिसमें एक ज्योति ऊपर और छोटी छोटी ज्योतियां उल्टे वृक्ष में, वो वृक्ष में समाई हुई थी। और फिर बाबा ने देखा कि उस से छोटे छोटे वो सितारे धीरे 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 उतरते उतरते इस सृष्टि पर पहुंचे, और सृष्टि पर पहुंचते पहुंचते बाबा ने देखा ये सारा संसार जो जलमग्न हो चुका था, पूरा नष्ट हो चुका था, वो धीरे धीरे वो छोटे छोटे सितारे देवी और देवता का रूप धारण करते हुए पूरे संसार में विचरण करने लगे। और बहुत सुंदर प्रकृति अपने चरम स्वरूप में सुख देती हुई प्रकृति देखी। बहुत विस्तार से बाबा ने उसका अनुभव किया और फिर देखा एक सुंदर सा सोने का महल, हीरे जड़े हुए, जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। और वो लक्ष्मी नारायण उस सुंदर महल से बाहर आए और एक आवाज बाबा को आई एक आकाशवाणी के रूप में, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी सृष्टि आनी है और उसके लिए आपको निमित्त बनना है। बाबा को तो समझ में नहीं आया मैं ऐसी सृष्टि क्या कैसे बनाऊंगा, क्या करना होगा उसको, उसके लिए मुझे। लेकिन उनको आया कि इस प्रकार मैं बैठा रहूंगा बनारस में तो काम नहीं बनेगा, भगवान ने मुझे बहुत बड़ा कार्य दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बिजनेस को वाइंड अप कर लूं। बहुत बड़ी बिजनेस थी बाबा की, तो कलकत्ता गई बनारस से और अपने बिजनेस पार्टनर को ये सब बता दिया और बिजनेस को वाइंड अप करके आप हैदराबाद सिंध चले गए। और कैसे बाबा एकांत में बैठे रहे, क्योंकि बाबा को वो कलयुगी दुनिया का विनाश और वो सतयुगी दुनिया की स्थापना का सुंदर जो दृश्य बाबा ने देखा, स्वर्ग का और विनाश का भयावह दृश्य, वो मन पटल से जा ही नहीं रहे थे। और बाबा का जीवन बिल्कुल साधारण बन गया। लोग आश्चर्य खाने लगे, क्या बाबा का ठाट था, अचानक बाबा बदल कैसे गए। और बिल्कुल इतना सिंपल ड्रेस, धोती कुर्ता बस यही पहनते थे और एकांत का अनुभव अपने घर में करते थे, कि अचानक बाबा को एक दिन शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसमें परमात्मा ने वो ज्योति का दर्शन किया। और फिर बाबा ने देखा वो ज्योति बहुत प्रकाशवान थी, बहुत तेज था, लेकिन बहुत ही प्यारा तेज था, कोई भयावह तेज नहीं जो जला दे। और धीरे धीरे बाबा ने देखा वो प्रकाश उनके करीब आया। और करीब आते 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 उनमें समा गया। उनके परिवार वाले देखते रह गए, ये क्या अनुभव हो रहा है बाबा को। और उसी समय बाबा के होंठ हिलने लगे, आंखें बंद थी, होंठ हिलने लगे। शिव परमात्मा की उनमें प्रवेशता हुई थी और शिव परमात्मा ने उनके मुख के द्वारा अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। ये जैसे एक आवाज, गहरी आवाज उनके मुख से निकली। उसके बाद जब आंखें खोली बाबा ने, परिवार वाले वहीं, तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, वो मेरे बहुत करीब आई और अब वो शक्ति कुछ कार्य करेगी, मैं नहीं जानता वो क्या है। और फिर तो देखते ही देखते एक विचित्र दृश्य उनके सामने आए। बाबा जिनको देखता था वे बाबा को देखते थे, देखते देखते बाबा वहां से ओझल हो गए और उसकी जगह श्री कृष्ण उनको दिखाई देता था। ये हैदराबाद सिंध में चमत्कार होने लगा। लोगों ने सोचा कोई जादू है, पर जादू बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये कोई ईश्वर की कोई शक्ति है कार्य करे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और देखते देखते दूर बैठे लोगों को भी ये अनुभव होने लगे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने लगे। और श्री कृष्ण के पास जा रहे थे तो अचानक श्री कृष्ण दूर और बाबा सामने खड़े हैं, और श्री कृष्ण दूर से कह रहा इशारे से, मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ। और ये कौन है कईयों को तो पता भी नहीं था। और उसी समय ये चमत्कार इतना बढ़ गया कि एक क्रांति का रूप ले चुका था। यहाँ तक कि टाइम मैगजीन जो अमेरिका से छपती है उसमें एक इंटरनेशनल आर्टिकल्स आते, उसमें ये छपा कि हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है जिनके पास चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता उनको कृष्ण के दर्शन होते और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये क्रांति हो गई। और उसके बाद दूसरी क्रांति क्या हुई कि यंग सिस्टर्स, उनको दर्शन ज्यादा हुए। और उनमें से एक है हमारी मम्मा, जिनको हम ओम राधे कहते थे शुरू में, इनका नाम राधे था। ये अपनी माँ को लेकर के आई, बहुत टैलेंटेड लड़की थी, स्कूल में बहुत अवार्ड लेती थी, परंतु इनके पिता ने देह त्याग किया था तो माँ बहुत रोती थी। तो माँ के खातिर ये बाबा के पास इनको लेकर के आई। और माँ ने जैसे ही बाबा को देखा, उनको बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और सचमुच वो रोती रोती आई थी और इतनी हंसने लगी, ये भी एक न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, उनको कृष्ण के दर्शन हुए। अब दूसरी बहन पिता और हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जो 14 साल की उम्र में आई, उनको घर बैठे बाबा का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार। और फिर कृष्ण ने कहा, मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। और वो जब आई अब बाबा के पास, बाबा को देखते उनको कृष्ण के दर्शन हो गए। बाबा ने इनको परख लिया, मम्मा को परख लिया, ये आत्माएं बहुत महान कार्य करेगी। और कैसे मम्मा, जिनको हम राधे कहते थे, उनसे तो बाबा ने ओम की ध्वनि करवाई। और जैसे ओम की ध्वनि करवाई, वो ओम कहती थी और उनसे राधे के दर्शन, लक्ष्मी के दर्शन होने लगे। और दादी प्रकाशमणि, जिनका लौकिक में नाम रमा था, उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। बाबा इनके परिवार को जानते थे, इनके पिताजी ज्योतिषी थे, और वो सदा कहते थे कि मेरी बेटी तो मीरा बाई की तरह होगी, मीरा समान कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करेगी। और सचमुच बाबा ने इनको कहा कि क्या आप अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करोगी। पिता ने स्वीकृति दे दी और फिर ये बाबा के पास समर्पित हो गई। राधे अपनी माँ के साथ समर्पित हो गई। इस प्रकार कितनी बहनें, यंग सिस्टर्स समर्पित होती गई और एक अलौकिक परिवार बन गया। उस समय बाबा ने एक स्कूल खोला हुआ था बच्चों के लिए, जिसमें उनको गीता का ज्ञान भी पढ़ाया जाता था, सब मानो की आध्यात्मिक विद्या भी उनको दी जाती थी। और बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को निमित्त बनाया, उनकी टीचर बन करके उनको पढ़ाए। तो इन बच्चों को ये आदर्श विद्या मिली, श्रेष्ठ शिक्षा मिली और इन सब का एक अलौकिक परिवार बन गया, जिनके अलौकिक माता पिता मम्मा और बाबा। मम्मा तो 16 साल की थी, बाबा तो 60 साल के थे। तो ये अलौकिक रूप से हमारे माता पिता बने और ये अलौकिक परिवार तैयार हो गया। और देखते ही देखते ये परिवार इतना बढ़ गया कि हैदराबाद सिंध तो छोटा पड़ने लगा, क्योंकि जो मकान लिए थे वो छोटे पड़ने लगे। तो हैदराबाद से फिर कराची गए, कराची तो बड़ा शहर है और वहां पर करीब 385 भाई बहने, जिसमें परिवार के परिवार भी थे और अधिकतर ये तरुण यंग सिस्टर्स थी, कुमारियां थी, माताएं थी, जिन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित किया। और 1937 से लेकर 1950 तक 14 साल बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर, टोटल आइसोलेटेड स्थिति में आपने तपस्या की। 14 साल तक इन बहनों ने कराची में रहते थे, सागर का किनारा है वहां, वहां जाकर के एक्सरसाइज भी करते थे और तपस्या भी करते थे सागर के सामने। अब इन 14 वर्षों में दुनिया बदल गई, एक और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 39-45, लेकिन ये संस्था कराची में ही थी। उसी समय भारत के अंदर अंग्रेज देश छोड़ो उनके भी बहुत नारे लगते रहे और आखिरकार 1947 में बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लाखों लोग मारे गए और वो युद्ध तब समाप्त हुआ जब हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया, जापान जर्मनी इन्होंने सरेंडर किया, अमेरिका इंग्लैंड विजयी बने, यूनाइटेड नेशंस तैयार हुआ कि आगे फिर और युद्ध नहीं होगा। लेकिन तब तक भगवान ने अपनी आध्यात्मिक सेना तैयार कर ली थी और 14 साल इन्होंने तपस्या की। और उसके बाद परमात्मा का आदेश मिला कि कुछ समय यही रहना है 1947 में। और फिर 1950 में जब गणतंत्र हुआ भारत, तब ये संस्था भारत में आई। ये परमात्मा के आदेश अनुसार आई, क्योंकि यही आदेश मिला कि भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत ही विश्व के लिए लाइट हाउस बनेगा, आध्यात्मिकता की किरणें भारत से सारे विश्व में जाएगी और इसके लिए आप एक पहाड़ पर जाएं। तो कराची सागर का किनारा और वहां से पहाड़ पर गए, माउंट आबू में आना हुआ, क्योंकि माउंट आबू बहुत दूर नहीं है, ये वेस्टर्न सेक्टर है, भारत का वेस्टर्न बॉर्डर। आप माउंट आबू जाएंगे कल, वहां देखेंगे बहुत ऊंचाई पर से, अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो वहां पहाड़ है और पहाड़ों के पीछे ही कराची है, बहुत दूर नहीं है। तो कैसे वहां से प्रस्थान किया और यहां भारत में आए, तो 14 सालों की तपस्या उनके रोम रोम में बसी हुई थी और वो तपस्या यहां पर भारत में लाए। और कैसे सुंदर रूप से उनकी विदाई, उनको विदाई दी गई। जो भी वहां पाकिस्तान से आए थे वे तो हाथ खाली आए थे, नंगे पैर आए थे, अपनी जान बचा करके आए थे। लेकिन बाबा के जो भी ये परिवार में थे उन सबको ये छुट्टी मिली, क्योंकि वहां का चीफ मिनिस्टर बाबा का मित्र था सिंध का, उसने कहा हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आप सब कुछ ले जाएं। तो कैसे बिस्तरा बोरी सब बंद है, इसमें दादी जानकी जी भी आपको दिखाई दे रही है, एकदम ऊंची ऊंची ऊपर बैठी है, और कैसे एक शिप दिया और उस जहाज में कराची से ओखा बंदर का आए जो सौराष्ट्र में है, और वहां से बाय ट्रेन कैसे आबू आना हुआ, ये शिप का एक दृश्य है। 385 भाई बहने उस जहाज में आए और ओखा बंदरगाह से फिर बाय ट्रेन आबू रोड आए। ये 1950 की ट्रेन है जब ये बहनों ने 14 साल के बाद दुनिया देखी, और आबू रोड पर पहुंच करके कैसे उनको माउंट आबू आना था, और यहां आकर के बाबा मम्मा ने तपस्या की। माउंट आबू ये राजाओं महाराजाओं का समर कैपिटल था, जो भी राजस्थान सौराष्ट्र गुजरात के कई राजे रजवाड़े थे वो गर्मियों में यहाँ आते थे इस एरिया के, क्योंकि ये एक ही हिल स्टेशन था उनके लिए। यहाँ बहुत महल बने हुए हैं जहाँ इस समय होटल्स है वो, या हॉस्टल्स है या स्कूल्स है, और बाबा ने यही एक चुना महल जहाँ अपने टोल टैक्स आप भर के जाएंगे उसके पास ही है, और यहाँ तपस्या की। और कैसे बाबा के साथ मम्मा ने भी बहुत तपस्या की, और इसी तपस्या के फलस्वरूप माउंट आबू में चारों तरफ अपनी तपस्या की किरणें या वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाते रहे, और उसके बाद माउंट आबू से ही हमारी बहनों का जाना हुआ कई स्थानों पर जहाँ से उनको निमंत्रण मिले, और उसके आधार से हमारे अलग अलग स्थानों पर सेवा केंद्र खुले। एक उदाहरण आपको देंगे, आप मनोहर इंदिरा दादी जी हैं, आप भी 12 साल की उम्र में इस संस्था में जुड़ी, और आपके परिवार वाले दिल्ली में रहते थे, उन्होंने इनको निमंत्रण दिया 1952 में कि आप आकर के हमें अनुभव कराइए आपने जो 14 साल की तपस्या की। ये जब गई आबू से दिल्ली, इनसे सबको देवी के साक्षात्कार होने लगे, और देखते देखते लोग इनके पीछे आने लगे कि आप हमें कुछ साक्ष अनुभव कराइए। तो कैसे इनके जाने से वहाँ भारत का पहला सेवा केंद्र माउंट आबू के बाद दिल्ली में खुला 1952 में, और फिर तो वहाँ से सेवा केंद्रों से भाई बहने आते रहे, पूरे भारत में हमारी सेवाएं चलती रही। फिर मम्मा भी जाती थी, बहुत बड़ा निमंत्रण कानपुर से मिला, लखनऊ से मिला, जहाँ पर बाबा जाकर के मम्मा जाकर के सेवाएं करती थी, और मम्मा से तो देवी लक्ष्मी सरस्वती सब के साक्षात्कार लोगों को होते थे, देवी आई है इसी भाव से वे लोग आते थे। और कैसे धीरे धीरे ये वृद्धि होती गई, दादी प्रकाशमणि सदा मम्मा के साथ रहते थे, मम्मा के कार्य में उनका पूरा सहयोग था, और कैसे मम्मा धीरे धीरे कर्मातीत बनते गए, संपूर्ण बनते गए, और 24 जून 1965 को मम्मा ने अपना देह त्याग किया, और उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। सबसे प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा थी, जगदम्बा सरस्वती ये बाबा ने उनको टाइटल दिया, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। और कैसे संपूर्णता को प्राप्त किया, परंतु परमात्मा ने ये सारा कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का बहनों को दिया हुआ था। और फिर उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी, वो बहुत ही फेमस हैदराबाद सिंध के परिवार की थी, बहुत ही धनी परिवार की थी, उन्होंने उनके फैमिली ने मुंबई में आकर के जसलोक हॉस्पिटल बनाया, किशनचंद चेलाराम कॉलेज बनाया, सिंधी लोग जो आए भारत में मुंबई में उन्होंने हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस बनाए, इन उसी परिवार की थी। और कैसे ये निमित्त बनी और एडमिनिस्ट्रेशन इस कार्य का संभाला। फिर बाबा निकलते रहे, बाबा दिल्ली में ये चित्र है जिसमें कई परिवार के भाई बहने बच्चे बाबा के सामने हैं, और माउंट आबू भी आते रहे, परिवार के परिवार माउंट आबू आते रहे, चारों ओर ये सेवा केंद्र खुलते रहे, ये परिवार यहाँ आते रहे, माता पिता की हमें पालना मिली। मेरा भी यह सौभाग्य था 1959-60 में मेरा यहाँ आना हुआ। मुंबई में बाबा आए हुए थे और कैसे मैं बाबा के सामने गई, तब मैं केवल 11-12 साल की थी और बाबा को देखते ही 1959 दिसंबर था शायद, और बाबा को देखते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये मेरे सच्चे अलौकिक पिता हैं। और बस यही लक्ष्य रखा, मुझे भी ये सेवा करनी है। और फिर पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन भी किया और 69 में अपना जीवन इसी में समर्पित किया। तो बाबा को देख करके हम सबको ये महसूस होता था कि ये हमारे अलौकिक पिता है, पारलौकिक पिता एक परमात्मा है। हमने कभी ये नहीं सोचा इनको हम परमात्मा कहें। बाबा कभी नहीं अपने पांव भी छूने देते थे, पिता की तरह ही रहे, अलौकिक पिता। कई समझते ब्रह्मा कुमारियां इनको भगवान मानती है, इनको गुरु मानती है। यहाँ हम कहते भगवान तो एक निराकार ज्योति स्वरूप ही है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को हम गुरु भी नहीं कहते, वो तो अलौकिक पिता है। और उस अलौकिक पिता द्वारा वो पारलौकिक पिता ने अपनी पहचान दे करके अपने साथ योग लगाने की शिक्षा दी है। बाबा बहुत पत्र लिखते थे, मुझे भी याद है बाबा ने मुझे पत्र लिखा था, क्योंकि मैं क्या डिसीशन लूँ अपने भविष्य का, मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। तो कई कहे तुम डॉक्टर बनो, कई कहे तुम ये बनो। तो बाबा को जब मैंने पत्र लिखा, बाबा ने मुझे पत्र में जवाब दिया कि बच्ची बाबा की आप में बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, आप रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो, ये बाबा ने मुझे कहा। तो सचमुच जो बाबा के महावाक्य थे वो सिद्ध हुए हैं। और कैसे विश्व की सेवा यहाँ भी हो रही है और विश्व में जाकर के भी हम सेवा करते हैं, ये सब बाबा का ही वरदान है। और बाबा के ये पत्र, हस्तलिखित पत्र बाबा के हमारे पास हैं। बाबा का पत्र, पांडव भवन आप जाएंगे माउंट आबू, वहाँ बाबा की झोपड़ी देखेंगे जहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखा करते थे, बच्चों से मिलते थे। और उस झोपड़ी की विशेषता है कि ऐसे महसूस होता है जैसे कि हम सचमुच बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है। और फिर ये पांडव भवन में ही हिस्ट्री हॉल है जहाँ पर बाबा मुरली चलाते थे। आपने बहुत कुछ सुना, बहनों द्वारा, भाइयों द्वारा वाणी चलाते थे, वो भी आप देखेंगे। बिल्कुल वैसा ही रूप है जैसे बाबा के दिनों में था, जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, हिस्ट्री हॉल है। और इस हिस्ट्री हॉल में जो पांडव भवन में हमारे करीब 300 समर्पित भाई बहने हैं, वो अपने क्लासेस यहाँ करते हैं। और बाबा ने एक ही बात कही कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक को ही याद करते हैं। और तुम बच्चों को भी एक को ही याद करना है, सर्व आत्माओं का पिता एक है। और उस एक पिता को ही याद करने से ही मनुष्य इस संसार को बदल सकता है, देव बन सकता है, स्वर्ग बना सकता है। ये बाबा का कमरा है। 1969 18 जनवरी को बाबा ने 93 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया अपने ही कमरे में। वो कमरा भी आप देखेंगे जहाँ बाबा रहते थे, वो अभी बहुत ही चार्ज्ड कमरा है। उस कमरे में हम जाते हैं, ऐसे महसूस होता है जैसे आत्मा एक सेकंड में इस शरीर से न्यारी हो गई, क्योंकि बाबा भी एक सेकंड में ही न्यारे हो गए। और दादी प्रकाशमणि जी उनके सामने थे और कैसे बाबा ने दृष्टि और हाथ के द्वारा सारी विल पावर्स दादी प्रकाशमणि जी को दिए और अब अव्यक्त हो गए 18 जनवरी 1969 को। और अव्यक्त होने के बाद 21 जनवरी को बाबा के ही पार्थिव देह का अंतिम संस्कार पांडव भवन में किया गया, जिनकी स्मारिका ब्रह्मा बाबा की यादगार शांति स्तंभ के रूप में बनाई गई है, जहां हम हर साल जाते हैं, भाई बहने आते हैं, हजारों भाई बहने 18 जनवरी पर तो विशेष रूप से आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और ये चार धाम हम कहते हैं पांडव भवन में पिता श्री ब्रह्मा बाबा के हैं, जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स है हमारा माउंट आबू में। आप कल जाएंगे अवश्य देखेंगे, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और झोपड़ी बाबा की। ये चार धाम की यात्रा हर एक भाई या बहन करते ही हैं और महसूस करते कि ये चार धाम की यात्रा करके ही आत्मा धन्य हो रही है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी ये दो हंसों का जोड़ा बने और इस विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ाया। दादी और दीदी हम इनको कहते थे, दो हंसों का जोड़ा, दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा थी, ऐसे ही हम मानते हैं। क्योंकि कितना सुंदर इनका आपस में प्यार था, आपस में इनकी लगन थी, एक समान थे विचारों में, हर बात में, और इस संस्था को कितना आगे बढ़ाया। दीदी मनमोहिनी ने 1983 में अपना देह त्याग किया और दादी प्रकाशमणि जी 1969 से 2007 तक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में रही। और बाबा के बाद दादी और दीदी के साथ ये सब दादियां, जिनको हम दादी माना बड़ी बहन के रूप में हम कहते हैं, इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सारे इंडिया में संभाला और फिर भारत के बाहर विदेशों में भी हमारे सेवा केंद्र खुले, दादी जानकी जी को खास विदेश में भेजा और वहां पर ये सेवाएं चारों ओर चली। और उसके बाद तो ये कार्य आप देखते हैं कैसे आगे ही बढ़ता गया। विदेश से भाई बहने आने लगे और अभी तो वर्तमान समय जैसे बताया 140 देशों में अपनी ब्रांचेज हैं। 1983 में पांडव भवन के सामने यह ओम शांति भवन बना, जहां 3000 भाई बहने माउंट आबू में इतने बड़े हॉल में बैठ सकते हैं। विदाउट पिलर्स का वो माउंट आबू का हॉल है, वो भी आप देखेंगे कल जाकर के, जहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी। बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ था 89 में, जहां चारों तरफ से महामंडलेश्वर आए थे। और फिर ज्ञान सरोवर, बहुत बड़ा एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड बना 95 में, वो भी आप कल माउंट आबू में देखेंगे, जहां हमारे अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं। और 91 में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बना, जो हमारे लिए एक आउटरीच प्रोग्राम्स का भी कार्य करता है। बहुत सारे विलेजेस में जाकर के डॉक्टर्स, हमारे समर्पित डॉक्टर्स सेवाएं देते हैं। और फिर ये शांति वन का जो जिस हॉल में आप बैठे हैं, इसको डायमंड हॉल कहते हैं, क्योंकि डायमंड जुबली ईयर 96 में ये बनकर तैयार हुआ था, जब इस संस्था के 60 साल हुए थे 96 में। तो तब से यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हजारों भाई बहने यहाँ आते हैं। इस हॉल में कम से कम 25,000 भाई बहने बैठ सकते हैं और कई बार तो इतने हो जाते हैं कि इस हॉल से बाहर अलग अलग स्थानों पर भी बिठाना पड़ता है। दादी प्रकाशमणि जी ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सुचारू रूप से चलाया, अन्य दादियां भी उनके साथ थे। और 2007 में 25 अगस्त को 85 इयर्स की एज में दादी ने अपना देह त्याग किया, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त की। और इस हॉल के आगे जो प्रकाश स्तंभ आप देख रहे हैं, वही दादी प्रकाशमणि जी की समाधि का स्थान है, जहां हम सब अनुभव करते हैं कि दादी जी ने कैसे विश्व की सेवा को आगे बढ़ाया। शिव परमात्मा को सारे संसार में प्रत्यक्ष करने का ये कार्य किया। इसलिए दादी प्रकाशमणि जी ने कैसे हम सबको तैयार किया, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनमें एक हमारी मुनि बहन है, वो आपको इनके आगे अनुभव सुनाएंगे। और फिर उस समय मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी हैं, जिनसे आप कल सुबह मिले, बड़े भाग्यशाली हैं। 99वां जन्मदिन हम सब ने उनका मनाया। भगवान उनको, शिव बाबा उनको और लंबी आयु दे, ताकि इस कार्य को और सुंदर रूप से आगे बढ़ाएं। दादी प्रकाशमणि जी के ने कैसे दादी जानकी जी को ये सब सौंपा, जो आज हम देख रहे हैं। दादी जानकी भी ये सब कार्य कर रहे हैं, कुमारियों की ट्रेनिंग, बड़ी बड़ी मास ग्रुप्स में भी ये कार्य दादी जानकी ने जाकर के किया। दादी जानकी के साथ सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी है, जो जिन आपका सौभाग्य था कल आप उनसे भी मिल सके। और इनकी ये विशेषता है कि आप एक बहुत सुंदर ट्रांस मैसेंजर हैं, और जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा उनके तन में प्रविष्ट होती है। और इसी हॉल में ही कैसे अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती है, उनको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा। शिव परमात्मा पिता और ब्रह्मा बाबा दादा, माना बड़ा भाई, दादी माना बड़ी बहन। और कैसे बाप दादा इनके तन में प्रविष्ट होकर के अव्यक्त वाणी चलाते हैं, जो हमारा टेलीकास्ट होता है, पीस ऑफ माइंड चैनल पर होता है। और आप लोगों ने, बहुतों ने अवश्य ये सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, जिन्होंने अपने वहां भी देखा है सेवा केंद्रों पर या अपने ही घरों में भी, वो हाथ उठाएं। देखिए, आप सब ने यह अनुभव किया है, आपको मुबारक है, आपने ये अनुभव किया। लेकिन आप जरूर चाहेंगे कि हम यहाँ आकर के भी अनुभव करें, तो हम कहते हैं अवश्य कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमारे नियम हैं। आप यहाँ आए हो, बहुत ही पवित्र स्थल पर आए हो, तीर्थ स्थान पर आए हो तो अवश्य कुछ तो आप दान भी देकर जाएंगे, तो यहाँ हमारी दान की व्यवस्था उस रूप से तो नहीं है, कंट्रीब्यूशन जरूर है जो भी सेवा करें, लेकिन दान हम क्या मांगते हैं, 5 खोटे पैसे मांगते हैं और एक आपसे प्रॉमिस मांगते हैं, कुछ देके जाएं कुछ लेके जाएं। क्या देके जाएं? 5 खोटे पैसे देके जाएं और एक आना लेकर के जाएं कि आप यहाँ से जाने के बाद एक नियम बनाएंगे कि सेवा केंद्र पर 1 बार 1 घंटा आना, ये वहाँ आने का आप प्रॉमिस करें और यहाँ दान करके जाएं। यही आपसे हमारी शुभकामना होगी। और क्यों नहीं आप यहाँ आ सकते, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, अक्टूबर टू मार्च होते हैं, सारी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, आप भी अवश्य आकर अपना सौभाग्य बढ़ा सकते हैं, परमात्मा से अपने वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद।
बहुत बहुत खूब, जैसे समय रुक गया था कि इतने बड़ी विशाल इतनी लंबी कहानी को, जो कि 78 वर्ष की कहानी है और आपने 78 मिनट भी नहीं लिए और इतने प्यार से पास बैठकर सुनाई, अभी कोई उठेंगे नहीं, अभी छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक्सपीरियंस हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी का। और आपकी विशेषता देखिए, क्योंकि आपका जन्म कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ, हमारे बीच आदरणीय मुन्नी दीदी जो कि शांति वन की और ज्ञान सरोवर पांडव भवन यहाँ की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल मैनेजमेंट की आप डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत शार्प सुंदर मेमोरी की आप धनी हैं, आपके साथ का स्टाफ भी इतनी ही अच्छी स्मरण शक्ति इतनी ही सिंसियरिटी से सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की सेवा करता है, आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि कुछ भी चीज की मैनेजमेंट ऐसे नहीं लगता कि आपके घर में अगर 50 लोग आ जाएं तो आप कैसे मैनेज करते हैं, कितने हड़बड़ाए हुए माथे पर त्योरियां चढ़ाए हुए डांटते हुए दिखाई देते हैं एक दूसरे को परेशान से, लेकिन यहाँ सबके चेहरे मुस्कुराते हुए बहुत खुश बहुत हर्षित, चाहे 3000 की जगह 5000 का भोजन बनाना पड़े या 3000 की कैपेसिटी हो और 5000 लोग भी आए तो भी कहीं किसी के चेहरे पर शिकन दिखाई नहीं देती, तो इतने सुंदर मैनेजमेंट स्थूल रूप से बाह्य रूप से मुन्नी दीदी संभालते हैं, इंटरनल रूप से तो परमात्मा पिता का वरदान है आपको। मुन्नी दीदी का जन्म कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ धनतेरस के दिन, इसीलिए इनका नाम लक्ष्मी रखा गया, लेकिन 1966 में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी टीन एज में ही किशोर अवस्था में ही आप यहाँ आए और माउंट आबू में आने के बाद बाबा ने बड़े प्यार से अपनी गोद में रखा इनको और आदरणीय दादी जी के साथ सेवा में लगा दिया, और क्योंकि छोटे थे उम्र में इसीलिए सब इनको मुन्नी मुन्नी कहते थे, दादी भी, और तब से ये मुन्नी दीदी ही हो गए, मुन्नी बहन फिर मुन्नी दीदी और ऐसे मुन्नी दादी बन जाएंगे। तो हम देख रहे हैं मुन्नी दीदी के साथ हम सब सेवा करते हुए उनके साथ बहुत सारी विशेषताएं हम देखते हैं कि दादी जी के साथ आपको देश विदेशों में जाने का मौका मिला, हर जगह जाकर आपने सब कुछ देखा महसूस किया और जहां भी कुछ अच्छी चीज दिखाई देती थी तो आप गुण चोर बनकर वो विशेषताएं वो वहां की भी विशेषताएं देखकर यहां अपने घर में शांति वन में पांडव भवन में ज्ञान सरोवर में उस चीज को बहुत सफलता से अप्लाई करते थे। तो आज भी यहाँ वो इतना सुंदर रूप दिखाई देता है, पूरी भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता, लेकिन बहुत सुंदर जिसको लोग बाहर की मैनेजमेंट कहते हैं, बाहर विदेशों में ऐसे होता है बाहर विदेशों में ऐसे होता है, वो सब कुछ यहाँ दिखाई देता है लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ दिखाई देता है। तो ये आपकी विशेषता है, हम मुन्नी दीदी जिसे जोर से ताली बजाएं जरा। तो मुन्नी दीदी जी से सुनेंगे कि आपने दादी जी के साथ रहते हुए किस तरह से ये सारे गुण सीखे, सारी विशेषताएं आप में आई। और विशेष बात कि मुन्नी दीदी सिर्फ चुपचाप काम किया करते थे, गुप्त रूप से, कभी भी इस तरह सबके बीच में आना, ज्ञान सुनाना ये कुछ वर्षों से शुरू किया, क्योंकि जब लगने लगा कि ये सब कुछ सिखाने की भी जरूरत है, जो चीज अपनी धारणाओं में इतनी ज्यादा आ गई है तो अब ओवरफ्लो होती है, सबको सिखाया भी जाए, तो हम आदरणीय मुन्नी दीदी जी से उनके शब्दों में उनके अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे, भारत के कोने कोने से प्यारे बाबा के घर पधारे, तो मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी आप सभी साकार बाबा की बातें सुन रहे थे, ब्रह्मा बाबा की, साथ में इस संस्था की, जो ये संस्था शुरू से अब तक यहाँ तक पहुँची है, वो सब आप सबको शिलू दीदी ने सुनाया। मैं भी इस ज्ञान में 66 में आई, और जब मैं आई तो मैं साकार बाबा से मिली, ब्रह्मा बाबा से। पांडव भवन में बहुत छोटा सा आश्रम था, तो मैं बाबा से मिली। बाबा मेरे को बहुत प्यार करते थे, गोदी में बिठाते थे, गले लगाते थे और मुन्नी मुन्नी मुरे को कहते थे। बाबा से जब मैं छुट्टी लेके वापस जाने लगी कलकत्ता, तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची आप क्या गिफ्ट लोगी? तो मैंने कहा, बाबा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने मुझे स्टोर में भेजा और वहां से मैं एक रुमाल लेकर के आई। तो बाबा ने कहा, बच्ची आप ये एक रुमाल ही लेकर आई हो? तो मैंने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत कुछ है। उसी समय साकार बाबा ने मुझे गले से लगाया, मैं कितनी छोटी थी, 16 साल की थी, गले से लगाया और मुझे ये वरदान दिया। तो ये बच्ची मधुबन में रहेगी, हम जो हमारा आश्रम है उसको मधुबन कहते हैं, तो ये बच्ची मधुबन में रहेगी और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। तो आप सोचिए, संपन्न परिवार की, माना शाहूकार परिवार की बच्ची, जिसने घर में कभी एक गिलास पानी भी नहीं उठाया होगा, और बाबा के पास जब हम आए तो बाबा ने हमें ऐसे वरदान दिया। तो ये वरदान का मेरे को तो न भंडारे का ज्ञान था न भंडारी का ज्ञान था, लेकिन भगवान का ये जो वरदान है वो इतना फलीभूत हुआ, इतना फलीभूत हुआ, जो मैं जब कलकत्ता गई तो मुझे वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और माउंट आबू की बहुत 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 खेच होती थी। फिर 69 में तो मैं आबू में, जब बाबा अव्यक्त हुए, बाबा के सामने मैं नहीं आई दूसरी बार, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय मैं यहाँ आई थी, और तब से लेकर के आज तक मैं यहाँ पर ही हूँ। 69 से आज 2015 है, तब से मैं यहाँ पर हूँ। मैंने किसी भी सेंटर का अनुभव नहीं किया, लेकिन बाबा ने अपनी गोद में मेरे को रखा, और दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी जी, जिनके बारे में आपको शिलू दीदी जी ने बताया अभी, उनकी ही छत्र छाया के नीचे पलते फूलते, बेहद की सेवाएं करते, मैं आगे बढ़ती रही और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब बाबा अव्यक्त हो गए तो 69 में दादी प्रकाश मणि जी इस संस्था की हेड बनी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, और उनके साथ दीदी मनमोहिनी जी भी थी। तो दादी जी के साथ मुझे अपने जीवन के 40 साल बिताने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादी जी मेरे को चलते फिरते गले लगाते थे और लवली बेबी बोलते थे। मैं जो कुछ हूँ आज प्यारे बाबा की बदौलत हूँ, प्यारे दादी जी की बदौलत हूँ, प्यारे दीदी जी की बदौलत हूँ। उस समय घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं होगा, मैं ही एक छोटे बच्चे के रूप में थी जिसको जिसके ऊपर प्रेम की वर्षा होती रही। उसी प्रेम की वर्षा ने मुझे आज इतना आगे बढ़ाया। तो मैं आपको दादी प्रकाशमणि जी के साथ का क्या अनुभव सुनाऊं? दादी जी संपूर्ण त्याग मूर्त थे, तपस्वी मूर्त थे, अथक सेवाधारी थे। दादी जी के जीवन में मैंने क्या देखा? इतने बड़े दादी थे, उनके अंदर कोई अहम नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई देह अभिमान नहीं था। सदा अपने को निमित्त कहते थे, कोई भी कार्य करना है मैं निमित्त हूं, करण करावनहार बाबा है। सदा एक बाबा याद रहा। और निर्माण चित, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हरेक को दादी जी ने रिगार्ड दिया, रिस्पेक्ट दिया। तो निर्माण चित सबके गुणों को देख करके उसको आगे बढ़ाया। कभी भी दादी जी ने किसी के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसके अंदर ये कमी है नहीं, हरेक की विशेषताओं को देख करके उसको आगे बढ़ाया और उसी प्रकार से उससे सेवाएं ली। और उनकी वाणी क्या थी? निर्मल वाणी। कभी जोर से बोलना, मैं इतने वर्ष दादी जी के साथ रही लेकिन जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, डांटना, कोई कार्य ठीक से नहीं करे तो बोलना, हम तो कितनी गलतियां करते थे छोटे थे तो, लेकिन हमेशा प्यार से दादी जी कहते थे ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है। तो दादी जी ने ये सिखाया, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोचकर बोलो। तो ये दादी जी के जीवन की जो तीन बातें मैंने आपको सुनाई, निमित बनना है, निर्माण चित रहना है और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है, ये सौगात आप यहाँ से इस महायज्ञ से लेकर के जाएंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए टेंशन फ्री रहेंगे, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। हमने दादी जी को इतने सालों में देखा, इतनी बड़ी संस्था की हेड रही लेकिन कभी उनको टेंशन नहीं होता था, हमेशा टेंशन फ्री। दादी जी जो भी आता था, कभी भी दादी जी ने सबको प्रेम लुटाया, खूब प्रेम लुटाया। हम तो देखते थे उनके खाने का टाइम हो, सोने का टाइम हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी आता था दादी जी बहुत बहुत प्रेम से मिलते थे, अपनी मधुर दृष्टि देते थे, मधुर मुस्कान देते थे। हम बोलते भी थे दादी आपका सोने का टाइम है, नहीं ये किस भाव से आया है, मुझे इनसे मिलना है। तो दादी जी ने, दादी जी के अंदर बहुत 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 विशेषताएं रही। दादी जी हमेशा, दादी जी ने हमें सिखाया कोई भी कार्य करना है तो बहुत बहुत अटेंशन के साथ करना है। और दादी जी ने सिखाया सदा एवर रेडी रहना है। और दादी जी ने सिखाया सदा एक्यूरेट रहना है। परफेक्ट हर कार्य करना है। बचपन से ही दादी जी ने हमें सात बातें सिखाई, बाबा का आज्ञाकारी बनना है, वफादार बनना है, फरमानदार बनना है, ईमानदार बनना है, फेथफुल होके रहना है, सच्चाई और सफाई से रहना है, एक बाबा दूसरा न कोई। हमने 16 साल की उम्र से जो दादी जी ने हमें गुरु मंत्र दिया सिखाया, उनको हमने अपने जीवन में अच्छी रीति से क्या कहें पूरा अंदर धारण किया, और जो बातें मैंने आपको बताई उस पर ही हम हमेशा चलते रहे। दादी जी के बिना पूछे हम कोई कार्य नहीं करते थे, आज्ञाकारी तो इतने थे जो कहे आसमान के तारे लाओ तो लाके दे देंगे, वफादार तो इतने थे जो एक रुमाल भी महायज्ञ में आती थी तो दादी जी को बताते थे, और एक रुमाल भी किसको देंगे तो बताते थे, और वो संस्कार आज दिन तक हमारे पास में है। मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं यहां आई तो ये संस्था क्या थी, एक छोटा सा पौधा थी, और आज ये इतना विशाल वट वृक्ष रूप धारण कर चुकी है। ये किसकी कमाल है, प्यारे बाबा की कमाल है। प्यारे बाबा ने बीज लगाया, पौधा तैयार किया, लेकिन उसको इतना विशाल वृक्ष रूप का किसने दिया रूप, वो प्यारी दादी जी ने, प्यारे बाबा के संग से, प्यारे बाबा की यादों में, प्यारे बाबा के दिखाए हुए मार्ग पे चल करके दिया। जब मैं आई तो केवल एक ही पांडव भवन का बाबा भवन छोटा सा कॉम्प्लेक्स था, और आज पांडव भवन में इतने आसपास भवन है, ओम शांति भवन 83 में बना, उसके बाद संस्था बढ़ती गई, फिर ज्ञान सरोवर बना, उसके बाद ये शांति वन बना, फिर मनमोहिनी वन बना जहाँ आप सब लोग रहे हैं, फिर संजय पार्क बना, बीच में हॉस्पिटल भी बनी। तो मैं दादी जी के साथ उंगली पकड़ के चली, कदम पे कदम रख करके चली, और हर समय दादी जी का हाथ पकड़े दादी के साथ साथ होती थी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के साथ 40 साल बिताना तो इंसान क्या नहीं सीख जाएगा, और वो भी मेरे जैसा एक्टिव इंटेलिजेंट व्यक्ति तो हर बात सीख जाएगा। तो दादी जी मुझे हर बात की आज्ञा करती थी और मैं उसको बहुत अच्छी रीति से करती थी हर कार्य को। जब पांडव भवन बना, ओम शांति भवन बना, दादी जी ने कहा ये हॉल सजाओ जाके, दरिया कुर्सियां घड़ियां सब कुछ जो कुछ होता है हॉल के अंदर। छोटी थी मैं इतनी, लेकिन हिम्मत रहती थी हमेशा, क्योंकि बड़े जो कार्य की आज्ञा देते हैं अगर हम वो कार्य करते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो हमको वो वरदान में चीज मिल जाती है जो हमारी बुद्धि को, जो फिर हम वो कार्य कर सकते हैं। जब ज्ञान सरोवर बना तो दादी जी ने कहा ये 2000 लोगों का कॉम्प्लेक्स है, इसको पूरा तुम सजाओ, बिस्तरा खटिया भवन हाल सब कुछ। अब आप सोचिए जिसने घर में एक गिलास पानी भी नहीं किया वो क्या करेगा, लेकिन ये सब भगवान की शक्ति है, परमपिता परमात्मा की शक्ति है, और आज्ञाकारी बनने की शक्ति है, वफादार रहने की शक्ति है, हर बात के लिए हाँ हाँ जी। ज्ञान सरोवर हमने पूरा तैयार किया, इतने बड़े बड़े जीवन में अपने फंक्शन किए हैं, गोल्डन जुबली डायमंड जुबली सब तरह का। हर कार्य के लिए दादी जी के सामने मैं एक छोटा बच्चा थी, मुन्नी जाओ ये कार्य करो, मुन्नी जाओ ये कार्य करो, जाओ ऐसे करके आओ, जाओ वैसे करके आओ। एक बार तो दादी जी ने मुझे आज्ञा दी तुम जाओ स्पिरिचुअल म्यूजियम में मॉडल्स को कपड़े पहनाओ। तब तो मैं इतनी छोटी थी, तब तो एकदम 69 की शुरू की बात बताती हूँ। मैंने बोला मुझे मेरे कपड़े ही पहनने नहीं आते तो मॉडल को कपड़े कहाँ पहनाऊंगी। लेकिन दादी जी ने कहा दादी जानती है तुम कर सकती हो जाओ। सचमुच में मैं वहां जाके खड़ी हो गई, सब मूर्तियों को मैंने कपड़े पहनाए, पूरा स्पिरिचुअल म्यूजियम तैयार किया। वो वहां है माउंट आबू में, उस म्यूजियम में जितने भी मॉडल्स हैं सबको मेरे हाथ के कपड़े पहनाए हुए हैं, और उसके बाद में हर 5-10 साल के बाद में उनके कपड़े चेंज करती थी। मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सब तरह की ट्रेनिंग देती है, ऐसे दादी जी ने मुझे सब ट्रेनिंग दी। फिर ये शांतिवन बना, इतना विशाल स्थान, 10,000 लोगों के रहने का। दादी जी के लिस्ट बनाओ क्या क्या खरीदना है। तो एक बार तो आदमी अचट खाएगा ना छोटा, अरे मैं कैसे करूंगी। फिर तुरंत मैं सोचती थी, नहीं दादी ने कहा है ना, मुझे करना है। खूब उमंग रहता था मेरे अंदर। मैं 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वालों में मुश्किल से मैं 4-5 घंटे आराम करती थी। और आज भी मेरी ये टेंडेंसी है, मेरे को सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। पूरे यज्ञ को संभालने के लिए हर छोटी छोटी बातों पर मेरा जैसे दादी जी का टेंशन रहता था, वैसे मेरा टेंशन रहता है। मन मोहिनी कॉम्प्लेक्स बना, ये सभी भवनों में एक घड़ी भी अगर कहीं लगी है तो वो बाबा ने किससे लगवाई है निमित्त बना करके। मैं मेरे लिए क्या कहूं, भगवान की रचना है, बाबा की, दादी की रचना है। दादी जी ने मेरे से इतने बड़े बड़े विशाल कार्य करवाए हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये संस्था उस समय कितने लोग थे यहाँ पर, मेरे जैसी ब्रह्मा कुमारियां 400-500 थी और आज 40-50 हजार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो दादी लीडर थी, तो हरेक को लीडर बनाया दादी ने। कभी भी कोई बात का बंधन नहीं डाला, तुम ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, नहीं। कोई भी कुछ दादी जी से पूछता था, मैं ये करूं, हाँ करो, म्यूजियम बनाऊं, बनाओ, मेला करूं, करो, मकान बनाऊं, बनाओ। हरेक को मालिक बनाया दादी ने। मैं कहूंगी मुझे भी मालिक बनाया दादी जी, हरेक को। उस समय हमारे स्टूडेंट कितने थे, 40-50 स्टूडेंट थे, और 40-50 हजार स्टूडेंट थे, और आज कितने हैं, 10 लाख स्टूडेंट हैं, जो ये ज्ञान योग का पूरा पालन करते हुए रेगुलर विद्यार्थी है और बाबा के ज्ञान में रेगुलर चल रहे हैं। और हमारी कितने सेवाएं केंद्र है इस समय, उस समय कितने होंगे, 400-500 सेवा केंद्र होंगे, और आज कितने हैं, 10 हजार से ऊपर हमारे सेवा केंद्र है। तो ये सब कमाल किसकी है, प्यारे बाबा की है, प्यारी दादी जी की है। दादी जी को मैंने देखा, हर आत्मा को उन्होंने खुश किया, संतुष्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारे बाबा के बच्चों को, जब मैं आई थी तो यहाँ 20 केवल समर्पित भाई बहने थे जिनको मैंने कपड़े पहनाना सीखा था, और अभी यहाँ पर 1200 समर्पित भाई बहने हैं जिनको साल में उनके जरूरत की सब चीजें मिलती है, और उसके लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। सब भवनों की देखभाल, सब यहाँ के लोगों की देखभाल, आने वालों की देखभाल। इससे बड़ी बात तो मैं आपको ये सुनाऊं, दादी जी 4 बजे शाम को उठ के बैठ जाते थे, मेरे को बोलते थे उठो कागज पेन लेके बैठो। अभी हमको तो नींद आएगी, हम बच्चे थे, लेकिन हम उठ जाते थे। फिर दादी लिखवाते थे, बाबा कितने दिनों में आएगा, 15 दिन में आएगा, गिनती करो, 15 तारीख को आया, इसके बाद 30 को आएगा, 1, 2, 3, 4 गिनती करो। फिर ये साल भर संस्था में क्या प्रोग्राम चलेंगे, राजयोग शिविर चलेंगे, कॉन्फ्रेंस चलेगी, कोई बठियां चलेगी, कोई ट्रेनिंग चलेगी, वो सब दादी जी के दिमाग से निकलता था और मेरे को सब लिखाते थे। तो मेरे को ट्रेनिंग मिल गई, इतने साल मैंने उनके साथ काम किया, जो बोला करने का, जो ऐसे बोला चलने का, जैसे बोला उठने का बैठने का, तो हम पूरा ट्रेंड हो गए। तो दादी जी 2007 में जब अव्यक्त हुए, टाइम का मैं शॉर्ट कर देती हूँ, तो दादी जी 2007 में जब अव्यक्त हुए, दादी जी से मेरा इतना प्यार रहा, मैं उनकी पर्सनल सेवा भी करती थी, बाबा का बेहद भंडारा संभालते हुए भी। तो अव्यक्त हुए तो थोड़ा मेरे दिल को लगा जरूर, लेकिन उसी समय मैंने दादी जी को कहा, आपने मुझे इतने साल संभाला, हाथ पकड़ के मेरा चले, अभी आप ही मुझे संभालिए। तो दादी जी ने कहा, मैं गई कहाँ हूँ, मैं तो यहाँ ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ, और सचमुच मैंने ये अनुभव किया। मैं वही दादी जी का रूम है जिसमें मैं दादी जी के साथ सालों साल रही, सोई। आज भी मैं उसी रूम में दादी जी के साथ जैसे सोती हूँ। सामने का बेड खाली रहता है, दादी जी का बहुत सुंदर चित्र रखा है जो लगता है दादी जी यहाँ विराजमान है, और दादी जी का अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ, जो प्रकाश स्तंभ है आप देखेंगे आंगन में। तो मेरा एक नियम है, मैं रोज, आज 8 बरस हो गया है, मैं रोज नियम प्रमाण 7:45 प्रकाश स्तंभ पे जाती हूँ और दादी जी से सब अपने दिल की बातें करती हूँ, सब वाइब्रेशन लेती हूँ, सब शक्तियाँ लेती हूँ, और मेरे को ऐसे लगता है दादी मेरे साथ है और मुझे हर तरह की गाइडेंस दे रही है। उसी गाइडेंस को लेकर के दादी जी के जाने के बाद मैंने ये लक्ष्य रखा, जो दादी जी ने किया वो मुझे करना है, उन्हीं कदमों पर चलना है, उसी प्रकार बाबा के सभी बच्चों को संभालना है, उसी प्रकार यज्ञ सेवा करनी है, उसी प्रकार मैं सारे आज वर्ष भर के यहाँ के जो प्रोग्राम बनते हैं वो मैं बनाती हूँ बैठ करके और सबको बताती हूँ, उसी प्रकार सब कुछ करती हूँ। तो मैं तो आज यही कहूंगी, आज दादी जी ने मुझे वर्षे के रूप में सब कुछ दे दिया है, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व कलाएं, उससे मैं ये बाबा का बेहद का विशाल यज्ञ जो है बहुत अच्छी तरह से संभाल रही हूँ। और मैं ये कहूंगी ये हाथ जो है वो मुन्नी के नहीं है, दादी के है, ये दिमाग मुन्नी का नहीं है, दादी का है, ये दिल मुन्नी का नहीं है, दादी का है। मैं तो ये कहूंगी हर पल हर क्षण उस महान विभूति का मैं अपने साथ संग अनुभव करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से बाबा के इस विशाल यज्ञ को संभालती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। और आज भी आदरणीय जानकी दादी भी मुन्नी बहन जी को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, उसी रिस्पेक्ट से वो सारा समझते हुए सब कारोबार उनको सौंपे हुए हैं। एक छोटी सी बात लास्ट में बताना,
एक बात मैं बता देती, भूल गई मैं।
बैठे रहे अभी,
मुझे कहना था
अभी भोजन मिलना शुरू नहीं
हुआ। दो अर्जन है,
दो मिनट
मैंने कहा ऐसा है, मेरे को एक बात कहनी थी आप सबको। कल सवेरे मेरी एक हार्दिक इच्छा है, तो कल सवेरे आप सभी राजयोग शिविर के बाद प्रकाश स्तंभ पर जाना और अपनी श्रद्धा सुमन प्यारी दादी जी को अर्पित करना, और कोई भी अपनी एक कमी वहाँ छोड़ना और सदा काल के लिए अपना परिवर्तन करना, दादी जी के पुष्प अर्पण करना, आपके लिए प्रबंध करेंगे और आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे वहाँ पर, कैसे दादी जी साकार वहाँ बैठी है और कैसे आपको शक्ति दे रही है। आप वहाँ से ऊर्जा लेकर के जाना, आपका ये विंग ऊर्जा विंग है ना, ऊर्जा लेकर के वहाँ से जाना, ठीक है। ओम शांति।
जब आदरणीय मुन्नी दीदी सुना रहे थे और शीलू दीदी भी हमें उस यज्ञ की इतिहास की बातें बता रहे थे, तो एक छोटी सी बात मनोहर इंद्रा दादी जी के द्वारा बताई हुई मुझे याद आ रही थी कि पहली बार जब दिल्ली में सेवा करने गए गंगे दादी और मनोहर इंद्रा दादी, तो जिस डेस्टिनेशन पर जाना था रेलवे स्टेशन पर उतरे और जहां जाना था तो वहां उन्होंने बताया, तो तांगे वाले ने कहा पूरे 8 आने लूंगा मैं। अब दिल्ली में क्या रेट था उस वक्त उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन वो 8 आने भी बड़ी बात थी। अब वो 8 आने देंगे ये पूरा किया, फिक्स हुआ, और वो वहां जाकर उस धर्मशाला के पास उतरे तो वहां पर अपने छोटे से पल्ले में बांधे हुए कुछ सिक्के निकाले और सिक्के पे सिक्का रख के देखा कि जो बड़ा है वो 1 रुपया, जो छोटा है वो 8 आने होंगे। सोचो वो बाहर की दुनिया की अनपढ़ बहने, और कितनी दिव्य बुद्धि से उनको भगवान ने नवाजा जिन्होंने विश्व पर राज्य किया। तो जब वो छोटा सिक्का देने लगे तो उसने कहा, बहन जी शायद आपको पता नहीं, अंग्रेजों का राज चला गया, पंडित नेहरू का राज आ गया है और सिक्के का साइज छोटा हो गया है, तो जो आप मुझे 8 आना समझ के 8 समझ के दे रहे हो वो भी 1 रुपया ही है। तो फिर उस तांगे वाला अच्छा जमाना था, तो तांगे वाले ने फिर बाकी पैसे वापस किए। तो तांगे वाले ने सारे सिक्के उनको बताए, रिकॉग्नाइज करवाए कि ये 54 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 8 आना, ये 1 रुपया। तो उन्होंने उनको सोचो बताया। तो इस तरह की बहनें इतनी महाशक्ति बनकर सारे विश्व पर राज्य करेंगी। पहले कहते थे ब्रिटिश राज्य में सूर्य कभी डूबता नहीं है, अब ब्रह्मा कुमारी के साम्राज्य में 147 कंट्रीज में जहां इनके सेंटर्स हैं हमारे, तो वहां सूर्य कभी डूबता नहीं है।
जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, नमनैनों से ये जहां गा रहा है। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रहना पाए हम, हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रहना पाए हम, तो दादी के अरमानों का, तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाएं हम, हमें प्यार बहुत है दादी से।